समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
चलो एक इतवार ऐसा भी मनाया जाए, सारे गमों को इस दिन भुलाया जाए, खुशियों को अपने घर दावत पर बुलाया जाए और मायूस सी जिंदगी को फिर से हंसाया जाए। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इतवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में यह है समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और सायरा मुज्तबा, हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस ऑन दिस संडे एडिशन ऑफ आज सवेरे। और वेल रवि, हम लोग की इस इतवार को नहीं, आई थिंक एवरी डे विद आज सवेरे हमारी कोशिश ही रहती है कि आपका दिन खुशगवार बनाया जाए।
बिल्कुल,
बिकॉज वी ब्रिंग यू एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग अंडर द सन इन दिस हाफ एन आवर न्यूज मैगजीन। ऑफकोर्स दे विल बी द लेटेस्ट हेडलाइंस अक्रॉस द नेशनल न्यूज एज वेल एज सम इंटरनेशनल न्यूज, some metro city updates from your very own city, and the last segment in which we remember some of the important events that took place on this day or the personalities who either have the birth or death anniversaries or birthdays today. So all of that in the next half an hour roughly. Let's start with the headlines first, Ravi.
Ji bilkul.
Campaigning has intensified for the third phase of general elections, with top leaders of major political parties making strong pitch to woo the voters through rallies and roadshows across the country. 95 parliamentary constituencies across 10 states and 2 union territories will go to polls in this phase on the 7th of May. A total of 1,351 candidates are in the frame this phase. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi yesterday addressed a public rally at the Tapovan grounds in Kolhapur city of Maharashtra. He said in the last 10 years, the NDA government has striven to find stable solutions to problems that were plaguing the country. Mr. Modi said that the women and the youth of the country have always been a priority for his government. 11 seats in Maharashtra, including Kolhapur, Hatkangale and Latur, will go to polls in the third phase. Senior BJP leader Amit Shah yesterday addressed election rallies in Porbandar, Bharuch and Panchmahal in Gujarat. Addressing a rally in Panchmahal, Mr. Shah said, the BJP government will implement the Uniform Civil Code once it returns to power. He said, the BJP government under the leadership of Narendra Modi has freed India from terrorism. 25 constituencies of Gujarat will go to polls in a single phase in the third leg on the 7th of next month.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कल महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक चुनावी रैली में कहा कि केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं जबकि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कांग्रेस महासचिव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमीरों के ऋण तो माफ करती है लेकिन किसानों के ऋण माफ नहीं कर पाती।
Congress General Secretary KC Venugopal has said that the party will release its next list of Lok Sabha candidates, including for Uttar Pradesh's pending seats, within 2 days. Congress held a Central Election Committee meeting yesterday to discuss candidates for highly anticipated seats in Uttar Pradesh, Rai Bareli and Amethi. According to sources, a proposal was given from the UP Congress to the CEC that the Gandhi family should contest the Amethi and Rai Bareli seats, and the decision was left to Congress President Mallikarjun Kharge. The Congress has not made any statement yet regarding the Amethi and Rai Bareli seats in Uttar Pradesh, which were considered strongholds for the Congress until the 2019 elections.
गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। श्री सिंह सुबह अहमदाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करेंगे और बाद में खंबात और भावनगर में चुनाव सभा को भी संबोधित करेंगे। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। वे आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल पाटन में एक चुनाव सभा करेंगे।
इन सम इंटरनेशनल न्यूज, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हैज वॉर्न्ड Washington will act if China does not stop supplying Russia with items used in its assault on Ukraine. Speaking to media in Beijing, the U.S.'s top diplomat said he had made clear to his counterparts that they were helping fuel the biggest threat to European security since the Cold War. He did not say what measures the U.S. was prepared to take. Mr. Blinken also stressed he felt Beijing can play a constructive role in the Middle East, pointing towards China using its relationship with Iran to urge against further escalation in its confrontation with Israel. The visit to Beijing, the second in 10 months made by Mr. Blinken, forms part of a significant increase in dialogue and diplomacy between these rival powers as they attempt to put relations on an even keel after a period of immense tension last year.
उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुख्य प्रचारक और वरिष्ठ नेता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा सीट के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कानपुर देहात में एक चुनावी रैली को संबोधित किया तथा कन्नौज में एक रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कानपुर में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकार ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के लिए 2,000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज फोरकास्ट दैट हीट वेव टू सिवियर हीट वेव कंडीशंस आर लाइकली टू कंटिन्यू ओवर ईस्ट एंड साउथ पेनिनसुला इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 डेज। सिवियर हीट वेव कंडीशंस आर ऑल्सो लाइकली टू प्रिवेल ओवर गैंजेटिक एंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। हीट वेव कंडीशन इज ऑल्सो लाइकली इन बिहार, झारखंड, इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश। IMD said maximum temperatures will rise by 2 to 3 degrees Celsius over East India and Maharashtra. On the other hand, there is forecast of heavy rainfall over Northeast India during the next 3 days.
Aur ab kuch sports ki khabrein le lete hain, Saira?
Yes, absolutely. In archery, India secured 4 gold medals and a silver in World Cup Stage 1 in Shanghai yesterday, following a hat-trick of gold medals by Jyoti Surekha Vennam. Jyoti won individual gold women's compound, defeating top seed Andrea Becerra of Mexico in the final. Earlier, the team of Jyoti, Aditi Swami and Parineet Kaur emerged victorious in the women's compound team final. In the compound mixed team final, Jyoti and her partner Abhishek Verma defeated the Estonian twins in the final.
IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर में 199 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान की टीम अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से अहमदाबाद में होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। एक अन्य मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में होगा। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। तो सायरा, मुख्य समाचार तो हो ही गए देश के विदेश के, तो अब कुछ बात मेट्रो समाचारों की भी कर ली जाए।
एब्सोल्युटली रवि, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। अ कपल ऑफ वंदे भारत स्पेशल ट्रेन्स ऑपरेटेड बाय साउदर्न रेलवेज नाउ रन ऑन लॉन्गर डेज। द वंदे भारत स्पेशल फ्रॉम चेन्नई एगमोर टू नागरकोइल विल रन अंटिल 27th of June इन बोथ डायरेक्शंस। The weekly Vande Bharat special from Chennai Egmore to Nagarkoil will run on Fridays, Saturdays and Sundays through 30th of June. Up to June the 30th, there will be 3 weekly Vande Bharat trains running from Nagarkoil to Chennai Egmore. Moving on to Bengaluru, the Election Commission of India has announced repoll in polling booth number 146, Government Lower Primary School in the Indiganatha village coming under Chamrajnagar parliamentary constituency in Karnataka. The commission has declared the election held on 26th of April in this booth as null and void and announced 29th April as the fresh date for repolling. Voting was disrupted in the said booth when a mob attacked the booth and destroyed the EVM. The villagers held a protest against the lack of amenities, which later turned violent, and a mob entered the polling booth and destroyed and burnt the EVM and the election material. There are a total of 538 voters allocated to this booth. An FIR has been booked against the villagers who disrupted the election on 26th of April. And moving on to Hyderabad, in Telangana, the Communist Party of India, CPI, and Communist Party of India Marxist, CPIM, are extending support to Congress in the Lok Sabha elections in the state. Both the parties have withdrawn from the electoral battle except in Bhongir. CPIM has fielded its candidate in Bhongir. However, CPM leaders held talks with PCC President and Chief Minister Revanth Reddy regarding this yesterday. Speaking to the media after the meeting, Mr. Reddy said he had held talks with the CPM leaders and appealed to them to support Congress not only in Bhongir but also in other constituencies to ensure that votes did not get split. He said they had also kept some other proposals before the CPM. CPM leaders agreed to support the Congress to defeat the BJP. However, it has to be seen whether CPIM withdraws from Bhongir, as tomorrow is the last date for withdrawal of nominations. So, Ravi, this was the buzz that I had from these three metros of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the buzz that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
भाई सायरा, मेरे पास भी बहुत से समाचार हैं इन तीनों मेट्रो से, तो शुरुआत दिल्ली से ही कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के जीटीबी एन्क्लेव में लोगों से जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं नई दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने पहाड़गंज क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल्याणपुरी क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से पार्टी उम्मीदवार को जिताने का आग्रह किया। आप पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने कल कीर्तिनगर क्षेत्र में लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र की निगम पार्षद अलका ढींगरा भी साथ रहीं। वहीं चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। दिल्ली में छठे चरण के अंतर्गत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और मतदान 25 मई को होगा। मतगणना 4 जून को सम्पन्न होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठे वायदों को जनता के बीच लेकर जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से राजधानी की जनता को अवश्य अवगत करवाना है। आम आदमी पार्टी ने राजधानी में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कल पार्टी मुख्यालय में वॉर रूम की शुरुआत की। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने इस वॉर रूम का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए वॉर रूम में कुल 12 विभाग बनाए गए हैं, जिनमें डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट और लीगल टीमें शामिल हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी अभियान की देखरेख के लिए पार्टी ने एक एक प्रभारी भी नियुक्त किया है। इस अवसर पर श्री राय ने बताया कि पार्टी ने कल से चुनावी अभियान के अंतर्गत दिल्ली में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार राजधानी में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। श्री राय का कहना है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट से देगी। बढ़ते हैं मुंबई की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने कल वकील उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया। वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र से पूनम महाजन सांसद हैं। निकम ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों में विशेष लोक अभियोजक के रूप में काम किया है। निकम का मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से होगा। मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को मतदान होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय डीईओ ने मुंबई के बांद्रा में मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर कार्यालय में 1 मई को एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य शहर में मतदान को बढ़ावा देना है। मुंबई उपनगर कलेक्टर राजेंद्र क्षीरसागर सुबह 6:30 बजे रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। डीईओ कार्यालय ने नागरिकों से रैली में भाग लेने और ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए डॉ विश्वनाथ अय्यर से 9619444027 और श्री कमल गाड़ा से 9821025381 पर व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 27 छात्रों के एक दल ने शिक्षकों की देखरेख में कल आकाशवाणी कोलकाता स्टेशन का दौरा किया। ये टीम विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से संबंधित है। उन्होंने क्षेत्रीय समाचार इकाई कोलकाता के समाचार कक्ष और स्टूडियो का दौरा किया। उन्होंने यूनिट के कर्मचारियों से भी बातचीत की और देखा कि रेडियो समाचार कैसे बनाए और प्रसारित किए जाते हैं। टीम ने नियंत्रण कक्ष का भी दौरा किया और रेडियो से संबंधित विभिन्न कार्यों को देखा। तो सायरा, ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और सायरा के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सायरा, सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी का जो मौसम है वो अपने श्रोताओं को बताते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता की अगर बात करें सायरा, तो वहां पर भी गर्म हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
यस रवि, इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली पर से, देन इवन टू द मैक्सिमम टेम्परेचर इज टचिंग नियरली 40, बट आजकल जो शामें हैं वो सडनली बहुत सुहानी हुई जा रही है। हवा अच्छी चल रही है, इनफैक्ट परसों तो बारिश भी हुई थी, इजंट इट?
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठंडा ठंडा लगता है। और मैं तो आपको एक बात और बताऊं, जब सुबह नहाते हैं ना तो पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा लगता है।
दैट्स ट्रू, क्योंकि अभी भी सुबह और शाम जो है थोड़ा सा प्लेजेंट है, थैंकफुली इट्स नॉट दैट स्कॉचिंग येट इन द मॉर्निंग।
बताइए और महानगरों का टेम्परेचर कैसा रहेगा?
वेल, इन चेन्नई एंड हैदराबाद देयर विल बी अ पार्टी क्लाउडी स्काई, वेयर एज बेंगलुरु विल हैव अ मेनली क्लियर स्काई टुडे। इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर्स इन चेन्नई, मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 degree Celsius, maximum will be around 36 degree Celsius. In Bengaluru, the temperatures would hover between 23 and 38 degree Celsius, while in Hyderabad, the temperatures would hover between 26 and 41 degree Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ। तो 1945 में आज ही के दिन इटली के देशभक्त सैनिकों द्वारा तानाशाह मुसोलिनी एवं उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
ऑन दिस डे बैक इन 1848 स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड बाय द फ्रेंच कॉलोनीज। इन 1855 द फर्स्ट अमेरिकन वेटरनरी कॉलेज वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन बॉस्टन।
और 1996 में
Yes, in 1996, Julie Christie and Lee Marvin won the Oscars for The Sound of Music at the 38th Academy Awards. What a wonderful movie, isn't it?
जी बिल्कुल। और 1999 में आज के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड सीड द्वारा एक वर्ष के अंदर मानव क्लोन बनाने की घोषणा की गई थी।
On this day again in 1999, the Chernobyl virus shut down thousands of computers around the world.
1999 में आज के दिन विश्वभर में हजारों कंप्यूटरों को चेर्नोबिल वायरस ने ठप किया. बिल्कुल ठीक कहा आपने.
यस एंड ऑल्सो ऑन दिस डे इन 2001 द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कॉल्ड टेनिस लेफ्ट फॉर द टीटो स्पेस स्टेशन.
सन 2001 में आज के दिन पहला अंतरिक्ष सैलानी टेनिस टीटो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ. और सन 2002 में आज के दिन बुकर पुरस्कार का नया नाम मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन रखा गया.
In 2008, Indian Space Research Organisation ISRO created new history by launching 10 satellites simultaneously with PSLV-C9.
2008 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने PSLV-C9 के साथ 10 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा था. और 2008 में आज के दिन मलेशिया में भारतीय मूल के 10 सांसदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी.
And in 2019, Avengers Endgame became the first film to make more than 1 billion on its opening day.
और अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों जयंतियों जन्मदिन के बारे में जानकारी देने का. तो सायरा आज जो सबसे पहला नाम है वो है पेशवा बाजीराव प्रथम का, जिनका जन्म जो है मतलब उनका जो कार्यकाल रहा पूरा वो 1700 से 1740 के बीच में रहा था. वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री रहे. इनका जन्म चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ. इनको बाजीराव बल्लाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है. इन्हें लोग अपराजित हिन्दू सेनानी सम्राट भी कहते थे. इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रणकौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार खासतौर पर उत्तर भारत में किया. इसके कारण ही उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद उनके पुत्र के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सका था और बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. और सहरा बाजीराव प्रथम की हम बात करें और मस्तानी की बात न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता.
तो मस्तानी की बात आप कर ही दीजिए.
मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रेसी थी मस्तानी. बाजीराव ने उन्हें अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दिया था और मस्तानी बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ कुशल घुड़सवार तलवारबाज युद्ध नीति की जानकार धार्मिक अध्ययन और कविता करने वाली अच्छी नर्तकी एवं गायिका भी थी. बाजीराव प्रथम और मस्तानी की प्रेम कहानी इतिहास की दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक है. और 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को बाजीराव प्रथम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और बाजीराव के देहांत के कुछ दिनों बाद मस्तानी की भी मौत हो गई. मस्तानी की मृत्यु कैसे हुई इस संबंध में कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन दंत कथाओं के अनुसार बाजीराव प्रथम की मौत की खबर सुनते ही मस्तानी ने अपनी अंगूठी में रखा जहर पीकर आत्महत्या कर ली. और वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मस्तानी सती संस्कार की प्रथा अपनाते हुए बाजीराव की चिता पर सती हो गई. और एक फिल्म अभी पीछे आई थी कुछ साल पहले बाजीराव मस्तानी, उसको भी आज के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, एक इतिहास समझने को मिलता है.
एब्सोल्युटली एंड वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म.
जी तो सुन लेते हैं एक सॉन्ग.
नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई.
Today we are also remembering Madhusudan Das, a lawyer and social reformer who founded the Utkal Sammelini in 1903 to campaign for the unification of Orissa along with its social and industrial development. He was one of the prominent figures helping in the creation of Orissa province and which was established on 1st of April 1936. He was also the first graduate and advocate of Orissa. He is also known as Kulbrud or the Grand Old Man, Madhu Babu and Utkal Gaurav or the Pride of Utkal. In Orissa, his birth anniversary is celebrated as the Lawyer's Day, that is today on 28th of April.
और अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड, दक्षिण भारतीय और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय करने वाले टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सलीम गौस के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1952 को, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 28 अप्रैल 2022 को। धारावाहिक भारत एक खोज और सरदारी बेगम तथा सोल्जर जैसी कई फिल्मों में अभिनय से उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। चेन्नई में जन्मे और वहीं शिक्षित हुए सलीम गौस ने बाद में एफटीआईआई पुणे से स्नातक किया और फिर सिनेमाघरों में उतर गए। वे एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी थे। भारत एक खोज, वागले की दुनिया, ये जो है जिंदगी और सुबह में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले सलीम गौस ने बॉलीवुड और दक्षिण भारत में समान लोकप्रियता हासिल की। तो सुन लेते हैं उन्हीं का एक डायलॉग।
यहां तक मैंने वो किया जो तुमने कहा, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। गाड़ी रोको, रोको। Come on. Good. तुम आदमी काम के हो, लेकिन मेरा उसूल है काम खत्म आदमी खत्म।
और अब बात महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष के बारे में, यानी उस व्यक्ति के बारे में जिसका भय पठानों और अफगानियों के मन में पेशावर से लेकर काबुल तक सबसे अधिक था, और उस शख्सियत का नाम है जनरल हरि सिंह नलवा। सिख फौज के सबसे बड़े जनरल हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया। यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की थी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं।
We are remembering an actress of yesteryears, Mehtab, who mainly acted in Hindi cinema, and she worked from 1928 to 1969. Born in Sachin in Gujarat to a Muslim family, she was named Najma at birth. Her father was a Nawab near a place in Surat, and she started her career in the late 1920s with small roles in films like Second Wife, Indira B.A. and Jayant. She then went on to do character roles before acting in the lead opposite Ashraf Khan in Veer Kunal. And after almost doing mainly action-oriented roles, she came into prominence with Kedar Sharma-directed Chitralekha. She married her early co-star Ashraf Khan, but later she divorced. They divorced later, and then she married Sohrab Modi, who cast her in the historical drama Jhansi Ki Rani. And that's how we remember Mehtab, the actress of yesteryear.
Yes, बीते दिनों की एक्ट्रेस है और बहुत इनकी भी फिल्में देखने वाली हैं।
Yes, in fact her last role was as a character artist in Sohrab Modi's Samay Bada Balwan.
और अब बात कर लेते हैं भारतीय सिनेमा में मशहूर ड्रेस डिजाइनर के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय, यानी कि क्या कहना चाहिए इनको,
भानु अथैया।
वे ऐसी पहली भारतीय महिला रही हैं सायरा जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। भानु अथैया 5.5 दशक तक हिन्दी सिनेमा में सक्रिय रहीं। इस दौरान उन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग को नित नए आयाम दिए। भानु अथैया ने फिल्म गाइड में वहीदा रहमान, ब्रह्मचारी में मुमताज, सत्यम शिवम सुंदरम में जीना तमान के वस्त्र डिजाइन किए, और उन्हें फिल्म निर्माता निर्देशक रिचर्ड एंटरप्रेन्योर की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रेस डिजाइनर का ऑस्कर भी मिला था। तो सुन लेते हैं इन्हीं फिल्मों के कुछ गीत।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
और भले पंथक पे मोहनत खत शाम सताए, मोरी चुनरी आली सटी जाए, मैं क्या करूँ। और भाई
In fact, Ravi, I would just like to add that she was not just the first Indian woman, but the first Indian to win the Academy Award. And alongside Hindi films, the most iconic costume designer, she had a historically important early career as an artist also. And her contemporaries were M.F. Hussain, F.N. Souza and Vasudeva Gaitonde. She was the only woman member of the Bombay Progressive Artists Group.
जी बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी दी आपने. तो चलते चलते आज का विचार कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है. इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और सायरा मुज्तबा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन लिसनर्स. हैव अ ग्रेट संडे अहेड.
नमस्कार.